है वो पूर्ण है और सब कुछ जो उनसे निकल रहा है वो भी अपने आप में पूर्ण है.
But when the absolute truth is covered by the cloud of Maya or illusion, then it becomes apparently material.
लेकिन जब ये परम सत्य जो है माया के बादल द्वारा ढका जाता है तो वो ऐसा लगता है कि वो भौतिक है.
The difference between material and spiritual is simply our perception.
भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर ये है कि हमारी दृष्टि का ही अंतर है.
When we forget a thing's connection to Krishna and how it can be used in the service of Krishna, that very thing becomes material and the source of bondage and so much karmic reactions.
जब हम ये चीज भूल जाते हैं कि ये कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा में लगना है तो वही चीज जो हमारे बंधन का कारण बन जाता है.
But when that maya or illusion is removed, we see how everything is meant to be utilized in Krishna's service. And then we see the spiritual essence of all creation.
और जब ये माया का बंधन निकल जाता है तब हम जान सकते हैं कि सब कुछ कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है और सबका आध्यात्मिक सार हम देख सकते हैं.
One time our Guru Maharaj, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, was walking with some of his devotees and they came upon a very, very dirty place where there was so much poverty and people were suffering on the streets.
एक बार हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद भक्तों के साथ चल रहे थे रास्ते पर और ऐसी जगह से पहुंचे जहां पर लोग बहुत गरीब थे और जगह बहुत गंदा दिखाई पड़ रहा था सड़क पर.
And rats running around.
चूहे इधर-उधर दौड़ रहे थे.
And they said, "Oh, Swamiji, we are very sorry we have taken you to this place."
तो कहने लगे स्वामीजी हमें क्षमा चाहते हैं कि हम आपको इस स्थान पर लेकर आए.
And he said, "Oh, why you are sorry?"
वो बोले आपको इसमें जो है क्षमा मांगने की क्या जरूरत है.
Do you not see this is Vaikuntha?
क्या आप देख नहीं सकते ये वैकुंठ है.
This is the spiritual world.
ये आध्यात्मिक जगत है.
A devotee can see the spiritual world everywhere.
एक भक्त जो है आध्यात्मिक जगत को सब जगह देख सकता है.
But due to forgetfulness we are suffering.
लेकिन भूल जाने के कारण हम दुख भोग रहे हैं.
So therefore a devotee remains in this world only to remind us.
एक भक्त इसीलिए दुनिया में रहते हैं हमें याद दिलाने के लिए.
How to recognize Krishna and his mercy in every situation of life.
कृष्ण और उसकी कृपा को कैसे हर स्थिति में पहचानना.
And for such a person when he leaves this world after performing such good work then he returns to the spiritual world.
और ऐसे व्यक्ति जब इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो वापस आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करते हैं.
Where he is original pure spiritual form he worships the personality of Godhead eternally.
और यहां पर अपने मूल स्वरूप में भगवान की नित्य सेवा में लग जाते हैं.
But amongst all the Vaikuntha planets the one that is considered to be the most full and complete in the opportunity for loving exchange with God is Goloka.
Aur in sab lokon mein jo ek sabse mahaan mana jata hai jahan par bhagwan ki seva ki purna avsar hai wo hai Goloka.
Where the presiding deities are Shri Shri Radha and Krishna.
Yahan par jo murti hain wo hai Shri Shri Radha evam Krishna.
And there the Lord is worshipped in special relationships or rasas.
और वहाँ पर भगवान जो है विशेष रसों में आराधित रहते हैं.
दास्य रस where you can be his servant.
दास्य रस अर्थात आप भगवान के दास बन सकते हैं.
साक्य रस where you can be an eternal friend of Krishna.
साक्य रस जहाँ पर आप भगवान के नित्य मित्र बन सकते हैं.
वत्सल्य रस where you can be loving Krishna as your own child for all of eternity.
वत्सल्य रस अर्थात भगवान को अपने पुत्र के रूप में हमेशा के लिए प्रेम कर सकते हैं.
And madhurya ras where you can love Krishna as your own lover for all of eternity.
और madhurya ras जहाँ पर आप भगवान को अपने प्रेमी के रूप में हमेशा के लिए आराधना कर सकते हैं.
But please know these all of these rasas are in perfect state of pure spiritual consciousness.
लेकिन ये जानना चाहिए कि ये सब रस जो है शुद्ध चेतना के स्तर पर हैं.
With no tinge of desire for one's own gratification but complete surrender of one's life for the pleasure of God and his devotees.
Aur isme kuch bhi bilkul bhavna nahi hai apne swayam ki santushti ke liye sirf bhagwan ki santushti ke liye kaarya hai.
5000 years ago Krishna brought his associates from this highest planet of Goloka Vrindavan to this earth and he even manifested the spiritual world on earth.
5000 वर्ष पूर्व भगवान अपने सहचरों को यहाँ पर वापस इस धरती पर ले आए और अपने लोग को भी यहाँ पर ले आए.
Just to attract our hearts and minds to go back there.
जिससे हमारे मन को आकर्षित कर सकें वापस वहाँ ले जाने के लिए.
Just like a travel agent will have so many advertisements. Please go to Paris or please go to London. Here is photos and here is pictures and there's so many stories about the place.
जैसे कोई ट्रैवल एजेंट जो है एडवर्टाइज करता है कि लंदन चलिए या पेरिस चलिए और देखिए इसकी एक फोटो है यहाँ पर आप आइए.
That you are working so hard all day long, you need a vacation. Come to London.
आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कड़ी, आपको फिर छुट्टी की जरूरत है, चलिए लंदन चलिए.
So similarly, Krishna descends to this world.
उसी तरह से कृष्ण ने धरती पर अवतार लेते हैं.
And he tells us, you have been struggling and straining for 8,400,000 species of life and you've been suffering birth and death. Please come back home, back to Godhead.
Krishna Bhagavan कहते हैं कि आप दुख भोग रहे हैं 84 लाख योनियों में. चलो अभी भगवान के धाम वापस.
It is such a wonderful place. Let me show you what it's like.
और इतनी सुंदर जगह है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे है वो जगह.
And he displays his wonderful pastimes.
और अपनी सुंदर लीलाओं को यहाँ पर प्रकट करते हैं.
And just by hearing these pastimes and learn and becoming attracted to these pastimes, our heart becomes purified of all of the tiny, insignificant, so-called pleasures of this world.
और इन सब लीलाओं का श्रवण करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और दुनिया के तुच्छ आनंद को हम त्याग देते हैं.
परम दृष्टानि वर्तते. This means when you experience the higher taste of Krishna, Krishna's name, Krishna's lila, Krishna's seva, Krishna's form, then all of the pleasures and attachments of this material world become insignificant.
इसका मतलब ये है कि जब हम ऊंचा आनंद लेते हैं कृष्ण के नाम का, कृष्ण की लीला का, कृष्ण की सेवा का, दुनिया के सब आनंद जो है वो अत्यंत तुच्छ नजर आते हैं.
So one day when Krishna and his friends were playing, they became very hungry.
एक बार जब कृष्ण और उनके ग्वाल बाल खेल रहे थे तो उनको अचानक बड़ी भूख लग पड़ी.
And Krishna told the cowherd boys,
Krishna ने ग्वाल बालों से कहा,
that there are some Brahmins who are performing a yajna.
उन्होंने कहा कि कुछ ब्राह्मण हैं जो कि यज्ञ कर रहे हैं.
And they have so much nice prasad at this yajna.
और उस यज्ञ में जो है बहुत सुंदर प्रसाद है.
And this is a very auspicious time for them to give in charity.
और ये बहुत मंगलकारी समय है उनके लिए आपको दान देने का.
So you please go and ask them on behalf of Balaram, not me, that we are hungry and we need prasad.
और आप जाकर मांगिए मेरे नाम से नहीं बलराम जी के नाम से कि हमें भूख लगी है प्रसाद चाहिए.
कृष्ण explained why to use the name of Balaram.
कृष्ण ने समझाया कि बलराम जी का नाम क्यों उपयोग किया जाए.
He said because these Brahmins are quite materialistic.
क्योंकि ये ब्राह्मण काफी भौतिकवादी हैं.
And they are very much conscious of a person's caste.
और वो लोगों की जाति को बहुत जो है महत्व देते हैं.
And because the world thinks of Balaram as the son of Vasudev and Rohini, he is classified as a Kshatriya.
क्योंकि लोग ऐसे मानते हैं कि बलराम जी जो है वासुदेव और रोहिणी के पुत्र हैं, तो उनको वो क्षत्रिय मानते हैं.
But because I am known as the son of Nanda Maharaj and Yashoda Mai, I am only known as a Vaishya.
और क्योंकि मैं नंद महाराज और यशोदा का पुत्र कहलाता हूँ तो मुझे वैश्य कहते हैं.
So there is a better possibility that they will give prasad for Balaram.
ज्यादा संभावना है कि बलराम जी को प्रसाद देंगे.
Actually, in the shastras, caste by birth is not accepted.
वास्तव में अगर हम शास्त्र देखें तो जाति जो है जन्म के अनुसार नहीं मानी जाती.
The Varnashram system is a very pure scientific process by which every single person, man and woman in society, can perfect their lives by performing their duties according to their guna and karma.
वास्तव में वर्णाश्रम स्थिति इसी है कि हर एक पुरुष और स्त्री जो है अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्तव्य करके जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है.
According to the qualities one has and the type of work one does, one has particular duties. And when everyone performs their duties in this spirit, the whole society works together in harmony, love and trust, and everyone becomes spiritually advanced.
और अपने गुण और कर्म के अनुसार व्यक्ति जब कर्तव्य करता है प्रेम की भावना से तो सब लोग प्रगति कर सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर.
So Krishna wanted to give the chance to these Brahmins to perfect their lives by making an offering to him.
और कृष्ण भगवान चाहते थे कि ब्राह्मणों को अवसर मिले जिससे कि वो अपने जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकें.
So he told his friends to go, and the gopas went to the yajna.
और उन्होंने अपने मित्रों से जाने के लिए कहा और गोप जो है वो गए यज्ञ में.
And they said to the Brahmins, please give us prasad.
उन्होंने ब्राह्मण के पास जाकर कहा कृपया हमें थोड़ा प्रसाद दीजिए.
कृष्ण और बलराम जी आर वेरी हंग्री.
कृष्ण और बलराम जो हैं बहुत भूखे हैं.
So these men were thinking, why should we waste our time with these cowherd boys?
लेकिन ये ब्राह्मण सोच रहे थे हमें इन ग्वाल बालों के साथ अपना समय क्यों व्यर्थ करना.
We have very important yajna to perform.
हम तो बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे हैं.
So they did not pay any attention to the gopas.
और फिर उन्होंने गोपों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया.
The gopas became very sad.
गोप जो है बहुत दुखी हो गए.
And they returned to Lord Krishna.
और वो जो है कृष्ण की ओर लौट गए.
And they were very unhappy. They said, we have failed in our mission to you.
बहुत दुखी हो गए. मैंने कहा कि हमारा मिशन जो है हम पूरा नहीं कर पाए.
Krishna said, you should not feel bad.
भगवान ने कहा कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए.
Because when you are a beggar, it is natural. Sometimes people will give you and sometimes people will not give you.
क्योंकि जब आप भिक्षुक हैं तो स्वाभाविक है कभी लोग देंगे और कभी नहीं देंगे.
We should never be attached to the fruits of our action.
हमें अपने कार्यों के फल के प्रति बिल्कुल आसक्त नहीं होना चाहिए.
We should not be attached to the results. We should simply be attached to doing the right thing for the right person.
हमें सही व्यक्ति के लिए सही कार्य करना चाहिए लेकिन फल के प्रति हमें आसक्त नहीं रहना चाहिए.
And what is the right thing? Devotional service.
और सही चीज क्या है? भक्ति.
And what is the right, who is the right person? Lord Shri Krishna.
और सही व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण.
The Supreme Personality of God.
जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है.
So he told his friends that you have done good because you tried. Just try your best. In our spiritual lives, if we just try our best, Krishna will be happy. He is not concerned with the results.
उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि आप जो है आपने पूरा अपना प्रयास किया यही सफलता है. आध्यात्मिक जीवन में भी हमें सिर्फ प्रयास करना चाहिए हमें फल से आसक्त नहीं होना चाहिए.
And is there any one man, woman or child who cannot try their best?
क्या ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या बच्चा है जो पूर्ण रूप से प्रयास नहीं कर सकता?
Whether you are expert and strong and healthy or whether you are uneducated and poor and weak, everyone can try their best.
चाहे आप बहुत उत्साही हो और सुसंस्कृत हो या आप बहुत कमजोर हो और गरीब हो सब अपने अपने प्रयास कर सकते हैं पूर्ण रूप से.
And that is all Krishna asks of us.
और यही तो कृष्ण चाहते हैं हमारे से.
So then he told the children that you go to the wives of the Brahmins.
और फिर कृष्ण ने बालकों से कहा कि अब ब्राह्मण पत्नियों के पास जाइए.
And you ask them for food and tell them that we are hungry.
आप जाकर उनसे कहिए कि हम भूखे हैं और भोजन की भिक्षा मांगिए.
So the children went to the Brahmins' wives.
और इसलिए बालक जो है ब्राह्मण पत्नियों के पास गए.
And said, Krishna Balaram are very hungry. Please give prasad.
उन्होंने कहा कृष्ण बलराम बड़े भूखे हैं इसलिए जरा उन्हें प्रसाद दीजिए.
Immediately they started gathering the best pots of the best prasad in the whole house.
तो तुरंत अपने घर से जो है सबसे अच्छा भोजन जो है एकत्रित करने लगे.
And they said, we will personally bring it to Krishna and Balaram.
और कहने लगे कि हम खुद व्यक्तिगत रूप से कृष्ण बलराम के पास ले जाएंगे.
And the husband said no.
उनके जो पति ने कहा नहीं.
You must help us with our yajna.
आपको यज्ञ में सहायता करनी है.
If you go now, we will not allow you to return.
अगर आप अभी जाएंगे तो आपको लौटाने का अवसर नहीं दिया जाएगा.
So they went.
लेकिन फिर भी वो चले गए.
हरे कृष्ण. सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Krishna tells us in Gita, abandon all varieties of religion and surrender to me.
कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर आप मेरी शरण में आ जाइए.
So we have a very very great responsibility to perform our duties and our responsibilities within this world.
हमारे बहुत से बड़ी जिम्मेदारी अपने कर्तव्य करने को और दुनिया के प्रति.
But if anyone or anything is telling us not to serve Krishna and not surrender to Krishna, then we have a right to follow in the footsteps of the Brahmins' wives and Sarvadharman Puricharya.
अगर कोई व्यक्ति हमें कह रहा है कि कृष्ण की शरणागति में नहीं आना तो हम ब्राह्मण की पत्नी की तरह हम सब छोड़ सकते हैं.
So they went into the forest.
वो फिर से जो है वन में गए.
And there they came and they saw the beautiful form of Krishna and Balaram.
वहां पर आने के बाद उन्होंने कृष्ण बलराम के सुंदर रूप को देखा.
Krishna was standing in his beautiful threefold bending form.
कृष्ण अपने त्रिभंग ललित रूप में जो है खड़े हुए थे.
Holding his flute.
उनके हाथ में उनकी मुरली थी.
With his arm leaning upon one of his friends.
और उनकी एक भुजा जो है उनके सखा के ऊपर.
And a peacock feather decorating his hair.
और उनके बालों के ऊपर मोर का पंख सजा हुआ था.
And a beautiful beautiful garland of wild forest flowers on his chest.
और उनके वक्षस्थल पर जो सुंदर वन के फूलों की माला थी.
His eyes like fully bloomed lotus petals.
और उनकी आंखें जो है पूर्ण रूप से सुसज्जित कमल के पंखुड़ियों के समान थी.
And he was smiling so sweetly.
और बड़े मंद जो है वो मधुर रूप से मुस्कुरा रहे थे.
When the Brahmins' wives saw this beautiful form of Krishna, their hearts became overwhelmed with love for him.
जब ब्राह्मण की पत्नी ने यह रूप देखा तो उनका हृदय जो है प्रेम से भर उठा.
And at that very moment they achieved the ultimate perfection of their lives.
और उसी क्षण पर उन्होंने जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया.
What is not available even for yogis who perform lifetimes of tapasya in Himalayas.
और वो चीज उन्हें प्राप्त की जो कि बड़े बड़े योगियों को हिमालय में भी नहीं तपस्या से प्राप्त.
What is not available for ज्ञानीज who study the shastras scrutinizingly, memorizing verses and slokas for birth after birth after birth.
जो कि ज्ञानियों को कई जन्म तक श्लोक याद करने के बाद भी नहीं प्राप्त होता, कई जन्मों के बाद.
What is not available to karma yogis or karma kandis who perform big, big, big yagyas.
और ये लाभ जो है कर्मकांडियों को भी नहीं मिलता जो कि बड़े 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 महान यज्ञ करते हैं.
That was attained by the simple wives of the Brahmins. Just by coming to make the offering of their foodstuffs to the lotus feet of Krishna.
वो ब्राह्मण पत्नी को मिल गया क्योंकि वो कृष्ण के लिए जो है भोज लेकर आए.
And Krishna told them how happy he was.
और कृष्ण ने उन्हें कहा तो कितने प्रसन्न हैं.
And he blessed them by giving them prema bhakti.
और वो उन्होंने उनको प्रेम भक्ति का आशीर्वाद दिया.
Which is the ultimate liberation.
जो कि सबसे बड़ी मुक्ति है.
And then he told them to return home and perform their duties to their husbands.
और उन्होंने कहा कि आप घर लौटकर अपने पतियों के प्रति अपने कर्तव्य को करिए.
They said, "How can we go home? Now we have come to the forest to see you. We want to stay with you only."
उन्होंने कहा हम घर कैसे लौट सकते हैं? हम वन में आए हैं आपका दर्शन करने, हम यहीं पर रहना चाहते हैं.
We have no attachments for anything now except you.
हमें आपके सिवाय और किसी से कोई आसक्ति नहीं है.
Krishna told him, "You will always have me within your hearts."
Krishna ने कहा कि आप हमेशा मेरे को अपने हृदय में देखोगे.
But you should go back and perform your duties.
लेकिन आप वापस लौटकर अपने कर्तव्यों को पूरा करें.
And your husbands, their hearts have also changed because you have become purified, so they will accept you back.
और आपके जो पति हैं उनका हृदय भी बदल गया है क्योंकि आप कारण.
So when the wives returned, and the Brahmins saw how effulgent and ecstatic they were in Krishna prema, they were thinking, "What fools we are!"
जब उनके पत्नी लौट कर आए तो ब्राह्मण सोचने लगे कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं.
We missed such an opportunity.
हमने ऐसा सुनहरा अवसर खो दिया.
What is the purpose of all the yagyas we are performing?
हम इतना सब यज्ञ कर रहे हैं उसका क्या लाभ है?
To please Krishna.
कृष्ण को प्रसन्न करना.
कृष्ण यज्ञेश्वर, द लॉर्ड ऑफ ऑल यज्ञस.
क्योंकि कृष्ण यज्ञेश्वर है अर्थात सारे यज्ञों के स्वामी हैं.
व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल द मंत्रस वी आर चैंटिंग.
ये सारे मंत्र जो हम गाते हैं उसका क्या लाभ?
टू प्लीज कृष्ण.
कृष्ण को प्रसन्न करना.
वेदांत कृत वेद विदेव चाहम. Krishna is the goal of the Vedanta, and he is the ultimate purpose to be fulfilled in following the Vedas.
Krishna jo Vedanta ke uddeshya hai aur Vedanta ka palan mein uddeshya Bhagwan ko hi prasann karna hai.
And what is the use of all the charity we give? The purpose of it all is to please Krishna.
Aur hum itna daan dete se kya labh? Uska uddeshya hai Krishna ko prasann karna. पूरा जीवन जो है वेदों के अध्ययन में बिताया और अंत में हमें अवसर मिला कृष्ण को प्रसन्न करने का लेकिन हम वो नहीं कर पाए.
Therefore the Brahmin said, to hell with all of our slokas.
हमारे सारे श्लोक जो है भाड़ में जाएं.
To hell with all of our Vedic mantras.
और सब सारे हमारे वैदिक.
To hell with all of our yagyas.
और सब यज्ञ भी बेकार.
To hell with our big status as Brahmins.
और हमारे ब्राह्मण की प्रतिष्ठा भी नरक में जाए.
To hell with our reputation and honor of being worshipped by everyone as guru.
और सबके द्वारा पूजित होना गुरु वो तक भी हमारे लिए बेकार है.
When we had the chance to please Krishna, we lost it.
हमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अवसर था और हमने उसे खो दिया.
But our wives, they are just simple Brahmin wives.
और हमारे पत्नी जो है तो एकदम बहुत सरल ब्राह्मण पत्नी.
They don't know mantra slokas, they know cooking.
वो मंत्र श्लोक नहीं जानते, सिर्फ वो प्रसाद बनाना जानते.
They don't know yagyas, they know milking cows.
उनको यज्ञ नहीं मालूम है, गाय दूहना मालूम है.
They don't know how to be big gurus, they just know cleaning houses.
उनको बड़ा गुरु बनना नहीं आता लेकिन घर की सफाई आती है.
And taking care of babies.
और बच्चों का लालन पालन करना आता है.
But because they had the desire and the eagerness to give whatever they had to Krishna, they have achieved Krishna prema, the ultimate liberation, and we are still rotting in this material world with all of our very fancy designations.
Looking in the uttar di Krishna ko prapt hone ki to safal ho gaye aur hum apne ye murkh upayon ke andar phase hue hain.
So they understood that their wives were actually their gurus.
Wo samajh gaye ki unki patniyan jo hain wo vastavik unke guru hain.
But Shukadev Goswami explains, the Brahmins could have gone right then and gone to the forest to give their offerings to Krishna.
और सुखदेव महाराज बताते हैं कि अगर ब्राह्मण चाहते तो उस समय जाकर भी कृष्ण को अर्पण कर सकते थे.
They were in full knowledge that their wives were right and they were wrong and they were wasting their lives.
वो जानते थे कि वो गलत हैं और उनके पत्नियां सही हैं और अपना जीवन बेकार कर रहे हैं.
But still they did not go.
फिर भी वो नहीं गए.
हरे कृष्ण. The reason they did not go was they were afraid.
वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको डर लग रहा था.
What would Kamsa think if they went to make offerings to Krishna?
कंस क्या सोचेंगे अगर वो जो कृष्ण को अर्पण करेंगे तो?
This is a very important principle to understand.
ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको समझना चाहिए.
Even when someone understands the purpose and goal of life, there will always be social pressures within this world where to surrender to Krishna, to become a devotee of Krishna, there is a certain risk.
Hum samajh bhi jayenge ki jeevan ka lakshya kya hai, to bhi Krishna ka samarpan karna, Krishna ka bhakt karna, uske upar jo hai samajik jo hai ek jokhim ho sakta hai.
The Brahmins' wives were willing to live in the forest for the rest of their times.
ब्राह्मण की पत्नियां जो हैं कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा हमेशा के लिए जंगल में रहने के लिए तैयार थे.
But the Brahmins were afraid to take that risk.
लेकिन ब्राह्मण जो है वो जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थे.
And therefore they could not achieve Krishna's mercy.
इसलिए उन्हें कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त हुई.
Krishna has come to this world and invited all of us personally and individually, come and make your offerings to me.
कृष्ण जो है दुनिया में आए हैं बताने के लिए कि मेरे को अर्पण करिए.
Utilize your body, your mind, your words and whatever you have in my service in a spirit of devotion.
Aur jo bhi aapka man hai, vachan hai, sab kuch meri seva mein arpan kariye.
Through the scriptures and through the great sadhus and rishis and devotees who are like cowherd boys, they are coming to ask us all, make your offerings to Krishna.
शास्त्र के द्वारा, ऋषि के द्वारा, जो कि ग्वाल बाल के समान है, वो आकर हमें कह रहे हैं कि कृष्ण को अर्पण करिए.
Krishna is hungry for your love and devotion. Offer it.
Krishna aapke prem aur bhakti ke liye bhookhe hain. Usko arpan kariye.
The offer has come to all of us.
Hum sabko ye avsar mila hai.
Tonight it's come to all of you.
Aur aaj aap sabko mila hai.
I am been deputed by the cowherd boys to give you this message.
मेरे को ग्वाल वालों ने भेजा ये संदेश देने के लिए.
Krishna is hungry for your love and devotion. Go and offer it to him.
Krishna आपके प्रेम और भक्ति के लिए बहुत उत्सुक हैं, इसलिए आप उनको जाकर अर्पण करिए.
Now we all have the choice.
अभी हमारे यहाँ जो चयन करने का अवसर है.
Will we be like the Brahmins or their wives?
क्या हम ब्राह्मणों की तरह होंगे या उनके पत्नियों की तरह?
Will we hesitate due to fear of some risk of what people will think, or will we go and make our lives perfect?
क्या हम थोड़ा डरेंगे, सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर हम निर्भय होकर चल पड़ेंगे?
So how do we make our offering to Krishna?
तो कृष्ण को हम अपना अर्पण कैसे करें?
By offering our hearts.
अपने हृदय को अर्पण करें.
And that comes through purifying our hearts.
और वो कैसे होता है? अपने हृदय को शुद्ध बनाने से.
And the transcendentally simple means of purifying our hearts is by associating with Krishna's devotees.
और सरल तरीका, जो दिव्य तरीका है, वो है कृष्ण के भक्तों का संग करना.
And hearing Hari Katha from their lips.
उनके मुखों से जो है हरि कथा का श्रवण करना.
And reading the books that Krishna has given us.
और उन पुस्तकों को पढ़ने से जो कृष्ण ने दिए हैं.
The holy shastra.
जो पवित्र शास्त्र हैं.
And by coming to the temple and seeing the beautiful deity of Bhagwan.
और मंदिर में आकर भगवान के सुंदर मूर्ति का दर्शन करके.
We are so pleased to see the beautiful worship of Krishna in this Nigri Krishna Mandir.
हम इतने प्रसन्न हैं देखकर कि यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर निगरी में भगवान की इतनी सुंदर आराधना हो रही है.
And by coming to that place where devotees are chanting Krishna's holy names.
और उस स्थान पर आकर जहाँ पर भगवान के भक्त उनका नाम कीर्तन कर रहे हैं.
This is the Yuga Dharma.
यही युग धर्म है.
The congregation of chanting of Krishna's names.
ये कृष्ण के नामों का यह संकीर्तन.
Within this age of Kali Yuga, Krishna has descended within the sound of his name.
इस कलयुग में जो है कृष्ण अपने नाम के ध्वनि में प्रकट हुए हैं.
Kali Kali Naam Rupe Krishna Avatar. And by chanting Krishna's name, we actually invite Krishna to manifest himself within our hearts and clean away all of the dirty material designations and attachments that are like a cloud obscuring our vision of God in this world.
और कृष्ण का अवतरित होने से हम भगवान से निमंत्रण करते हैं कि अपने सब आसक्तियों को, जो कि बादल के समान है, वो सब निकाल देंगे.
Throughout the holy scriptures, the glories of the holy name are pronounced.
सारे शास्त्रों में भगवान के पवित्र नाम की महिमा गाई गई है.
कली कले कलेर दोसनिदे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनारेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे. In this age of Kali Yuga, we are all drowning in an ocean of faults.
इस कलयुग में हम सब दोषों के सागर में डूब रहे हैं.
There is so much cheating and hypocrisy and so much suffering and so much disease.
कितना धोखेबाजी है, कितना ढोंग है और कितने बीमारियां हैं.
But there is one benediction.
लेकिन एक आशीर्वाद है.
That anyone and everyone simply by sincerely chanting the holy name of Krishna in kirtan can purify their hearts and achieve the ultimate perfection of liberation.
कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में भगवान के नाम को गान करके अंतिम जो मुक्ति का स्तर है उसको प्राप्त कर सकता है.
कृष्ण बाणम प्रसा कृष्णम संगोपांगश पारशनम जग्याय संकीर्तनाश. It is explained in this age of Kali Yuga, the Lord appears in a beautiful golden form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And those who have intelligence worship the Lord under his guidance by chanting loudly the holy names of Krishna.
और ऐसा बताया जाता है कि इस कलयुग में भगवान जो है सुनहरे रूप में आते हैं और जो बुद्धिमान है वो इस नाम संकीर्तन में भाग लेते हैं.
There are many names of Krishna.
कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं.
But Lord Chaitanya has extracted from the Kali Santarana Upanishad the beautiful verse that explains how this Mahamantra is the perfect medicine to cure all the disease of this age of Kali and bring about the awakening of our natural love for him.
और चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कैसे ये जो महामंत्र ने सुना है जो कि एक दवाई के समान है सारे बीमारियों को दूर करने के लिए.
So let us all take shelter of this wonderful merciful process of chanting the holy names of Krishna. Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
And live a pious, moral life.
हमें पवित्र नाम का आश्रय लेकर जो है शुद्ध जीवन बिताना चाहिए.
Don't be greedy.
लोभी मत बनिए.
Be charitable.
और दानी बनिए.
Use the precious gifts that God has given you for the welfare of humanity.
जो भगवान ने जो आपको दिया है वो मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करिए.
And the greatest welfare is to help revive a person's original spiritual consciousness, which will save them from the sufferings of birth and death.
और सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है कि लोगों की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना जो कि उनको मृत्यु से बचा सकता है.
This is all natural when our heart becomes purified through the chanting of the holy names.
ये सब स्वाभाविक है जब भगवान का नाम लेने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है.
The scriptures explain that the conclusion of all knowledge is to always remember Krishna and never forget Krishna.
शास्त्र बताते हैं कि सब का जो निष्कर्ष है कि कृष्ण को हमेशा स्मरण करना और कृष्ण को कभी नहीं भूलना.
And through the name Krishna can be remembered by all persons in all circumstances of life.
और नाम के द्वारा कृष्ण जो है हर स्थिति में जाने जा सकते हैं.
So every day we should regularly with discipline chant the holy names.
और हर रोज हमें जो नियम से भगवान के नामों का गान करना चाहिए.
Make your home an ashram by chanting the holy names along with your family members.
अपने घर को आश्रम बनाइए वो कैसे भगवान के नामों का गान करने के द्वारा.
And under the direction of sincere devotees, see how your life becomes sublime.
और सच्चे भक्त के निर्देश में देखिए कैसे आपका जीवन जो दिव्य हो जाता है.
Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद.